अरुणिमा होटल के बाथरूम में उस अनजान औरत से बात कर रही थी और हैरानी से उसकी बातें सुन रही थी। जब उस औरत ने ये कहा कि वो कभी माँ नहीं बन सकती तो अरुणिमा को बेहद अफसोस हुआ। एक पल को उसके दिमाग में अपने बच्चों का ख्याल आ गया। अरुणिमा ने अफसोस जताते हुए कहा, आई एम सॉरी अगर मेरी बातों ने आपको हर्ट किया हो। लेकिन वो औरत हल्की सी मुस्कुराई और बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अब तो ये जख्म इतने पुराने हो गए हैं कि तुम्हें याद करके खुद भी तकलीफ नहीं होती, लेकिन उस हादसे ने मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल दी थी। इसी वजह से मैं जब भी किसी औरत को देखती हूँ तो पहचान जाती हूँ कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं, जैसे कि मैंने तुम्हें देखकर पहचान लिया। वैसे मेरा नाम काव्या है। अरुणिमा मुस्कुराते हुए बोली, हेलो काव्या, मेरा नाम अरुणिमा है। काव्या ने मुस्कुराते हुए अरुणिमा को देखा और कहा, अरे तुम्हारा नाम तो बहुत खूबसूरत है और मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे नाम की तरह तुम्हारा बच्चा भी बहुत प्यारा होगा। पता है लोग मुझे देखकर भी यही कहते थे कि जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा तो वो भी मेरी तरह ही होगा, लेकिन वो दिन कभी मेरी जिंदगी में आया ही नहीं। काव्या के चेहरे पर एक दर्द भरी लकीर आ गई। अरुणिमा ने हैरानी से उसे देखा लेकिन उसके दर्द को और ना बढ़ाते हुए बोली, फिक्र मत कीजिए काव्या, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। लेकिन उसकी बात पर काव्या हंसते हुए बोली, भगवान को तो पता नहीं, लेकिन मेरी जिंदगी में जो कुछ भी बुरा हुआ है वो मेरी अपनी वजह से हुआ है। अरुणिमा ध्यान से काव्या की बातें सुन रही थी। काव्या हल्की दुख भरी आवाज में अपने अतीत को याद करते हुए बोली, उस वक्त कुछ और ही था। मैं बचपन छोड़कर जवानी की दहलीज पर कदम रखी रही थी कि मेरी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जो पूरी तरह से रहस्य था, लेकिन मैं धीरे धीरे उसकी तरफ खिंचती चली गई और उस कच्ची उम्र की अट्रैक्शन में मुझे उससे प्यार हो गया। उसने भी दावा किया कि वो मुझसे प्यार करता था, लेकिन मेरे परिवार को हमारा रिश्ता मंजूर नहीं था क्योंकि वो एक गलत काम में शामिल था। उसका रिश्ता क्राइम से था। मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, ना ही उसके असली काम के बारे में जानती थी। इसलिए मैं सबके खिलाफ हो गई, अपने परिवार के, अपने अपनों के, उन सबके जो मेरे लिए अच्छा सोच रहे थे, और उस इंसान का साथ दिया जिससे मैं प्यार करती थी। धीरे धीरे जब मैं उसके साथ रहने लगी तब मुझे पता चला कि वो क्या काम करता है। वो इल्लीगल हथियारों का स्मगलर था। दूसरे देश से हथियार मंगवाता और इल्लीगल तरीके से हमारे देश में सप्लाई करता था। कुछ वक्त साथ रहने के बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं उसे ये बात बताना चाहती थी लेकिन तब तक उसका बर्ताव अजीब होने लगा। रातों को घर ना आना, हफ्तों तक गायब रहना, मुझसे बातें छुपाना और पहले जैसी बातों का ना होना। उसके बिहेवियर में बदलाव आने लगे और मैं परेशान रहने लगी। फिर एक दिन उसने कहा कि हमें इंडिया छोड़कर बाहर जाना है। उसी दिन मैं उसे बताना चाहती थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन वो मेरी बात सुनने को ही तैयार नहीं था। उसने जल्दी जल्दी कपड़े बैग में डाले और मुझे लेकर निकल गया। मुझे लगा हम कहीं और बसने जा रहे हैं, लेकिन वो दरअसल इल्लीगल तरीके से देश छोड़ने की प्लानिंग कर रहा था। पुलिस उसके पीछे पड़ी थी और देश छोड़ने से पहले ही हम दोनों को अंडरवर्ल्ड और पुलिस ने घेर लिया। उन्होंने हम पर फायरिंग की। मेरे पति ने मुझे बचाने की कोशिश की लेकिन उस हादसे में मैंने अपना सब कुछ खो दिया। जब मेरी आंख खुली तब मैं अस्पताल में थी और मुझे पता चला कि मैं अपना बच्चा खो चुकी हूँ और मेरे पति जिंदगी भर के लिए पैरालाइज हो चुके थे। मैं टूट गई थी, बिखर गई थी, खुद को संभाल नहीं पा रही थी। लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरे पति ने अपने बच्चों को सिर्फ अपनी बेवकूफ़ी की वजह से खो दिया और अब वो सारी जिंदगी एक बोझ बनकर रह गए हैं, तो उन्होंने खुद ही अपनी जान ले ली। मैं सारी जिंदगी के लिए अकेली रह गई। मैं मानती हूँ वो एक गलत इंसान था, गलत रास्ते पर था, लेकिन मैंने उसे दिल से चाहा था। उसके जाने के बाद कभी किसी और को अपनी जिंदगी में आने नहीं दिया और माँ बनने का सपना, बच्चों का सपना, शायद ये मेरी किस्मत में ही नहीं था, लेकिन दिल से माँ बनने की ख्वाहिश हमेशा रही। इसीलिए जब भी कोई प्रेग्नेंट औरत दिखती है तो पहचान लेती हूँ। काव्या अपनी बात खत्म करती है। उसकी आंखों में जो आंसू थे वो रोते हुए अरुणिमा को देखकर मुस्कुराती है और कहती है, तुम भाग्यशाली हो जो तुम्हें भगवान ने ये तोहफा दिया है, अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश करना और उन्हें वो सब देना जिस पर उनका हक है। मुझे यकीन है तुम मेरी तरह लापरवाह और स्वार्थी मन नहीं बनोगी, बल्कि एक अच्छी माँ बनोगी। तुम्हारे पति और तुम मिलकर अपने बच्चों की बहुत अच्छे से परवरिश करोगे। उसके बाद काव्या अरुणिमा के पास आती है और उसके कंधे को थपथपाते हुए कहती है, अब मैं चलती हूँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, अगर किस्मत में हुआ तो हम एक बार फिर जरूर मिलेंगे। उसके बाद काव्या वहां से चली जाती है। अरुणिमा बाथरूम में अकेली थी लेकिन उसके कानों में काव्या की बातें गूंज रही थी। काव्या की कहानी ने अरुणिमा को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। उसने देखा था और महसूस भी किया था कि आस्तिक इन दिनों काफी बदला बदला सा है। वो अरुणिमा के साथ बहुत अच्छा और खुश महसूस कर रहा है और यही बदलाव अरुणिमा को असहज कर रहा था। काव्या ने बताया था कि उसने अपने पति को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताया था और एक गलत फैसले ने उसके बच्चे को उससे दूर कर दिया। अरुणिमा ने भी अभी तक अपनी प्रेगनेंसी के बारे में आस्तिक को नहीं बताया था। वो हर बार मौका ढूंढती थी लेकिन हर बार कुछ ऐसा हो जाता कि वो उसे कुछ नहीं बता पाती थी। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि देर करते करते एक दिन इतनी देर हो जाए कि अरुणिमा के हाथ से वक्त और हालात दोनों निकल जाए और वो कुछ ना कर पाए। तब वो भी काव्या की तरह पछताती रह जाएगी कि अगर उसने पहले ही सही फैसला ले लिया होता तो शायद आज हालात कुछ और होते। अरुणिमा का दिल तेजी से धड़क रहा था। आस्तिक भले ही इन दिनों उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा हो लेकिन जो कुछ भी उसने पहले किया था उसका डर अब भी अरुणिमा के दिल और दिमाग में गहरा बसा हुआ था। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाए। अरुणिमा काव्या की बातों को ही सोच रही थी और जब वो बाथरूम से बाहर निकली तो उसका पूरा चेहरा सोच में डूबा हुआ था और निगाहें दिशाहीन थी। उसके दिमाग में सिर्फ काव्या की बातें चल रही थी। तभी वो किसी से टकरा जाती है। घबराते हुए जब उसने खुद को संभाला तो सामने आस्तिक खड़ा था जो उसे बेचैन निगाहों से देख रहा था। उसने घबराते हुए अरुणिमा को देखकर कहा, क्या हुआ तुम्हें, क्यों टाइम लग गया? काफी देर हो गई थी इसीलिए मैं तुम्हें लेने आ गया, तुम ठीक तो हो ना? अरुणिमा घबराते हुए सिर हिलाती है लेकिन फिर जल्दी से कहती है, आस्तिक मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ चलो टेबल पर चलकर बात करते हैं, डिनर लग चुका है और मैंने तुम्हारे लिए हल्का खाना ही ऑर्डर किया है और नॉनवेज भी हटवा दिया है। आस्तिक उसे टेबल की तरफ ले जाते हुए कहता है लेकिन तभी अरुणिमा उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है, नहीं आस्तिक मुझे अभी तुमसे बात करनी है, शायद अभी हिम्मत नहीं जुटा पाई तो फिर कभी नहीं कर पाऊंगी। आस्तिक उसे देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, हाँ बोलो ना क्या कहना है तुम्हें, मैं तुम्हारी सारी बातें सुनने को तैयार हूँ। अरुणिमा ने एक गहरी सांस ली और अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए कहा, मुझे तुमसे कहना है कि जब हम बैंगलोर में थे और तुम लावण्या को ट्रिंग 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 ट्रिंग, अचानक आस्तिक का फोन बजने लगता है। उसने जेब से फोन निकाला, विक्रम का नंबर था लेकिन देखकर भी आस्तिक ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और फोन वापस जेब में रखते हुए बोला, अरुणिमा बताओ तुम्हें क्या बात करनी है? किसका फोन था? अरुणिमा ने पूछा। आस्तिक ने इग्नोर करते हुए कहा,
वो विक्रम का था लेकिन कोई बात नहीं, मैं बाद में बात कर लूंगा। तुम बताओ ना, तुम क्या कहना चाहती थी, क्या कर रही थी तुम जब हम बेंगलुरु में थे और लावण्या की क्या बात थी? अरुणिमा ने फिर से हिम्मत जुटाई और आस्तिक की तरफ देखते हुए कहा, हाँ आस्तिक मैं तुम्हें बताने ही वाली थी कि जब बेंगलुरु में तुम लावण्या को साथ लेकर आए थे तब उसके बाद डॉक्टर ने मुझे ट्रिंग 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 ट्रिंग, एक बार फिर से आस्तिक का फोन बजा। इस बार भी वही विक्रम का कॉल। क्योंकि अरुणिमा आस्तिक का फोन देख सकती थी इसलिए उसे साफ दिख गया कि विक्रम का नाम है। उसने कहा, कोई बात नहीं, मुझे लगता है विक्रम भैया को तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है इसलिए बार बार कॉल कर रहे हैं, तुम पहले उनसे बात कर लो, हो सकता है कोई जरूरी काम हो। आस्तिक एक गहरी सांस छोड़ते हुए सिर हिलाता है और फोन रिसीव कर कान पर लगाकर कहता है, हाँ बोलो विक्रम। सामने से विक्रम कुछ कहता है जिसे सुनकर आस्तिक की आंखें चौड़ी हो जाती हैं और वो हैरानी से कहता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम जल्द से जल्द मुंबई आओ, मुझे तुमसे पर्सनली बात करनी है, विक्रम की आवाज़ आती है। आस्तिक गुस्से में फोन रख देता है। उसका पूरा चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसे इतना गुस्से में देखकर अरुणिमा घबरा जाती है और पूछती है, क्या हुआ? आस्तिक गुस्से में अपनी आंखें बंद करता है, दांत पीसते हुए कहता है, विक्रम और आभा ने शादी कर ली है।